Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal.
नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका स्वागत.
वेलकम सिद्धार्थ.
नमस्कार आप दोनों को भी और साथ साथ सभी सुनने वालों को भी.
सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर. तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के बाद राजेश.
इंडियन स्टॉक मार्केट शोड रिजिलियंस डिस्पाइट फॉल इन मेजर इंटरनेशनल मार्केट्स. सेंसेक्स फेल मार्जिनली बाय 13 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,102. निफ्टी रोज 37 पॉइंट्स. Prime Minister Narendra Modi is on a visit to Mauritius. Will it inaugurate over 20 India-funded projects ranging from capacity building to community-linked infrastructure? And India is the best-positioned country in Asia for economic growth despite ongoing global trade tension, says a report by Morgan Stanley.
आर्थिक सुर्खियों में, वैश्विक बाजारों में गिरावट के बावजूद घरेलू शेयर बाजार संभला रहा. सेंसेक्स 13 अंक की मामूली गिरावट से 74,102 पर बंद हुआ. निफ्टी में भी 37 अंक की बढ़त. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में सामुदायिक ढांचागत निर्माण के भारत द्वारा वित्त पोषित 20 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. और मॉर्गन स्टैनली के अनुसार वैश्विक परिदृश्य के बावजूद भारत एशिया में बेहतर आर्थिक वृद्धि दर वाला देश. सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. घरेलू शेयर सूचकांक का शुरुआती गिरावट के बाद मामूली सुधार से बंद हुए. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 13 अंक के मामूली नुकसान से 74,102 के स्तर पर बंद हुआ. हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 38 अंक की बढ़त बनाने में कामयाब रहा और 22,498 के स्तर पर बंद हुआ. बीएसई मिडकैप सूचकांक में 0.7% की बढ़त रही, लेकिन स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% की गिरावट भी नजर आई.
The benchmark domestic equity indices today reversed initial losses and ended almost flat with a positive bias. The Indian market showed resilience despite weak global cues and fall in major international markets amid recession fears and tariff concerns. The 30 share index of the Bombay Stock Exchange, Sensex, fell marginally by around 13 points to close at 74,102. However, at the National Stock Exchange, Nifty 50 rose 37 points or 0.17% to settle at 22,498. The broader market indices at the BSE showed a mixed performance. While the BSE Mid-Cap Index rose over 0.7%, the BSE Small-Cap Index fell down around 0.7%. In the Sensex Index, 15 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top laggards, IndusInd Bank plunged over 27%, Infosys slipped nearly 2.5%, and Larsen & Toubro dropped more than 1.7%. Conversely, among the top gainers, Sun Pharma rose more than 2.6%, ICICI Bank gained almost 2.5%, and Bharti Airtel increased over 1.9%. In sectoral indices at the BSE, 9 out of 21 sectors ended down. Among the top laggards, IT sector lost 0.87%, focused IT sector slipped 0.82%, and BankEx fell 0.36%. In the top gainers, realty jumped 3.92%, telecom sector advanced 2.78%, and oil and gas rose 1.58%. Overall, the market breadth at the BSE was negative as shares of 2,506 companies declined, 1,466 advanced and 119 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 14 companies hit their 52-week high while 200 hit their 52-week low.
अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे की मजबूती से 87.21 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। डॉलर इंडेक्स कारोबार के दौरान 103.5 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। सिद्धार्थ, बाजार की दिशा कहीं ना कहीं बाजार ये बताता तो है, उम्मीद भी जगाता है कि शायद गिरावट का दौर अब बीत रहा है या बीतने वाला है। अभी बाजार क्या वापस से रेंज बाउंड की तरफ ही चलता रहेगा, या हम मान के चलें कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर सेंसेक्स की भी हम बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं वो दौर तो खत्म हो गया जब 74,000 के स्तर को आ जाता है, या निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो 22,500 के स्तर के आसपास रहता है। क्या ये मानने के पर्याप्त कारण है कि बाजार में वो जो भयंकर गिरावट का दौर था अब कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है या खत्म होने के कगार पे है?
नहीं, अब आप जो कह रहे हैं बात, काफी लोग इस बात की तरफ अब जो है, या लोगों का, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि शायद मतलब द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। बट मुझे क्या लगता है कि मुझे लगता है अभी भी ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने के लिए मुझे लगता है अभी कुछ दिन और हमें इंतजार करना चाहिए। और उसके पीछे कारण ये है कि आप देखेंगे रोज रोज कुछ ना कुछ नई बातें अभी भी बाहर आ रही हैं। जैसे जब से जब ये गिरावट का दौर शुरू हुआ अक्टूबर से, तो तब आपने देखा FIIs की सेलिंग शुरू हुई और उसके बाद बाजार अभी तक जो है प्रेशर में है। और उसके बाद जब से अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप आए, उन्होंने जो टैरिफ को लेके जो पूरा तूफान मचा हुआ है दुनिया भर में, चाइना हो, मैक्सिको हो, कनाडा हो, हम लोगों के ऊपर भी ये दबाव है और हम लोग भी कॉन्स्टेंटली अमेरिका के साथ इंगेज्ड हैं आज की डेट में। लेकिन कल आप देखेंगे अमेरिकी बाजारों में सडनली बहुत बड़ा सेल ऑफ हुआ, तकरीबन $4 trillion वर्थ ऑफ का मेल्टडाउन था उनकी जो अपनी मार्केट्स में। तो और एक नई बात जो आई, जो सडनली आई, जो मैंने तो अभी तक नहीं सुना था, और मुझे आप करेक्ट भी कर सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो मतलब रिसेशन के फियर्स जो अब अमेरिका में जो उनके टैरिफ पॉलिसी के बाद जो आ रहे हैं, उठ रही हैं बातें इस तरह की, तो वो एक नया आयाम जो है ना इस सारी जो अनिश्चितता का दौर चल रहा है उसमें एक और नई कड़ी जुड़ रही है।
महंगाई दर भी 4% के आने के आसपास की आशंकाएं जताई जा रही हैं, जो वहां के लिहाज से काफी अलार्मिंग स्तर है।
बिल्कुल ठीक बात कही अमित, नहीं जब आप टैरिफ लगाएंगे दूसरे देशों पे तो वो भी आप पे काउंटर टैरिफ लगा रहे हैं। कनाडा वगैरह कहीं, अब उनके जो नए प्रधानमंत्री जो आए हैं उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि हम झुकेंगे नहीं अमेरिका के सामने, और ऑलरेडी उन्होंने भी टैरिफ लगा दिया है, चाइना ने उधर लगा दिया है। और तो इस वजह से मुझे लगता है एक तो वो करेगा, प्लस जो उनकी टैरिफ पॉलिसी है उसके वजह से एक जनरल वहां पे ये एक अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। तो वो भी अगर अमेरिका में भी एक अनिश्चितता का माहौल है, तो मुझे लगता है अभी ये कंक्लूड करना कि एकदम ये जो है मार्केट्स बॉटम आउट हो गई, ये कहना मुझे मतलब मुझे लगता है जल्दबाजी है।
So, आपको यू फील दैट द इफेक्ट्स ऑफ द ट्रंप tantrums are still not over, but do you think the market is ignoring the good factors that are there, good sentiments that are there? Look at oil, for example.
No, Rajesh, what you are saying is absolutely right. See, if you look at what you are saying is Trump is the effect of Trump tantrums, I don't think it is still, everything is over.
हालांकि ट्रंप को 50 दिन हो चुके अब राष्ट्रपति बने हुए तकरीबन।
नहीं तो हर दिन तो आप अमित देखते हैं ना कि वो कोई ना कोई नई बात कह देते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे अभी दो तीन दिन पहले ये कह दिया कि अब भारत भी तैयार हो गया टैरिफ घटाने के लिए, जो कि वो पहले नहीं मानता था, लेकिन अब हमने उसको ये बात साबित कर दी है कि आपकी टैरिफ। लेकिन मुझे नहीं लगता ग्राउंड सिचुएशन ऐसी कुछ है, क्योंकि कल ही भारत सरकार के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो MPs के साथ उनकी बैठक हुई शाम को, उन्होंने बोला कि अभी भी हम इंगेज्ड हैं और ऐसा हमने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। हाँ, हम एक फेयर डील चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका हमारा एक बहुत बड़ा पार्टनर ट्रेड पार्टनर है। तो मुझे लगता है, और जो राजेश ने ये बात कही, ये बात बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं, पॉजिटिव्स हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट वो पॉजिटिव्स होने के बाद भी ये विश्वास अपने आप में नहीं ला पा रहा है कि हाँ ठीक है अब यहां से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे जो आपने बात कही पॉजिटिव्स, अगर आप गिनेंगे तो इतने सारे पॉजिटिव्स हैं। थर्ड क्वार्टर में GDP जो है बाउंस बैक कर चुकी है, जहां तक इन्फ्लेशन है हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल में है।
फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग।
यस एब्सोल्युटली, फूड इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, प्लस ग्रोथ हैज बाउंस बैक, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग इज ऑल्सो बैक ऑन ट्रैक, प्लस द स्टिमुलस दैट वी हैव गिवन इन आर बजट, इन द सेंस दैट वी हैव मेड अ, वी हैव टेकन we have given people huge benefit of income tax cut. Mm. Plus, we have also rationalized I don't know if it was in anticipation of U.S. Trump coming to U.S., but still we rationalized our tariff structure also. It was a major overhaul of our tariff structure also in the budget. Plus, we have given a boost to our MSMEs. So, all in all, if you see, as you said, crude oil has also kind of moderated. It's now below 70, which is a big positive for us. So despite all positives, still, I think somewhere market is not able to gather that confidence to move ahead from this.
So I would like to draw your attention to the fact that Wall Street's market rout has wiped out $4 trillion dollars of market capitalization from the S&P 500, which is equal to the entire market value of all BSE listed companies, right? So this decline, driven by escalating trade tensions, inflation concerns, and uncertainty over Trump's policies, has or will continue to have impact. As you said, the fear is not over. What Trump can bring on the table is still not over.
Yeah, because Rajesh, as he yesterday also again, he said that he doesn't accept that U.S. economy is getting into a recession. He said it is in a transition mode. It is not into recession. So going forward, yes, I think whatever happens over next 2 months, I think again next 60 days, I think 75 days are going to be crucial for the world, because on the other side, look, we still have Ukraine-Russia going on. We still don't have peace in Middle East. So those kind of things unfolding on a daily basis, plus Trump's, as you rightly said, tantrums. Every day we have a new, this thing from him. So I think things and what happens to our own tariff agreement with U.S., how does it pan out? So all those, I think market still in a wait and watch mode on that because of those reasons.
So we will not be India, for example, I'm talking about India, we will not go unscathed. Some effect will happen to the Indian markets. If inflation goes up in US, what is it that, how will we suffer?
See, it's not about we suffering. I think our suffering,
is the wrong word.
Yeah, impact.
How will we be impacted or affected?
So what, Rajesh, what I feel is that whatever had to happen in terms of our whatever hit we had to take, I think we have taken that hit. Now, I think the details of those kind of impact that you would see after the agreement on tariffs, there are areas like agriculture, pharmaceuticals, industrial goods,
But how have we taken the hit?
He hasn't done anything, but still he's been threatening us that we'll impose eye to eye reciprocal tariffs on India. I'm going to announce on April 2, whatever. So those, and still think picture is still not clear. So the hit, obviously, post Trump and FIA withdrawal, the hit is visible on our own markets, because our own macroeconomic fundamentals, nothing has happened over last 2-3-4 months which should have led to this fall in Indian markets. And despite, as you said some time back, as we discussed, that our own macroeconomic fundamentals on the other side are very strong. In fact, our macroeconomic fundamentals are improving. Despite that, we are in this uncertain times. But I still believe, I were to talk from an investor point of view, I think it is already a good time to look at stocks with good valuation, because there are a lot of stocks
DII is giving us a lot of confidence.
Yeah. So again, that's what I said, since you asked what could impact. Mm. So I think impact people have who wanted to go out, who wanted to make money or wanted to sell in, have already done that. But now what is holding our own markets even at this level, since as Amit rightly said some time back, that despite the fall in US market, sharp fall, we didn't see that kind of impression of that in our own Indian market. It's basically because of our own domestic investors who continue to repose faith in Indian market through people buying directly, as well as the huge investments coming through the systematic investment plan.
Aur aaj bhi agar jo domestic institutional investors hain, unki net buying 263 crore se adhik rahi hai, jabki foreign investors ki 485 crore ki net selling hui hai. Lekin aise daur mein, jaise aapne kaha ki lagatar nivesh karte rahe aur niveshit bane rahe, kaun se wo kshetra hain? Kyunki agar BSE ki baat karte hain to 21 mein se 9 sector सिर्फ डाउन में थे, इसका मतलब है कि बाकी सेक्टर्स जो 12 सेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं उम्मीद जगाए हुए थे। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो रियल्टी और टेलीकॉम सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर, इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। क्या वापस से हमें मानना चाहिए, एक जमाने में जैसा कहा जाता था कि सबसे ज्यादा जो मुनाफा आता है वो कहीं ना कहीं रियल्टी से आता है, अब वापस से भारतीय निवेशक उसके बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं, या हमारा जो अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी इसका असर है?
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित। देखिये, एक तो बिकॉज हमारी डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और जो मुझे लगता है बजट में जिस तरह के टैक्स कट्स दिए गए हैं, तो वो भी जो एक मन में हम लोगों के हिंदुस्तान में अभी तक ये धारणा थी कि अभी कंजम्पशन नहीं हो रहा उस तरह का, तो मुझे लगता है इस साल अप्रैल के बाद जब लोगों के हाथ में उस तरह का वो जो पैसा धीरे धीरे लोगों को, क्योंकि इनकम टैक्स कट है तो वो एक साथ तो कुछ एकमुश्त आएगा नहीं, लेकिन हाँ, एक आदमी को ये पता है कि अगले साल उसका किस तरह का उसके हाथ में पैसा होगा या किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो स्पेंडिंग विल ड्राइव दोस काइंड ऑफ सेक्टर्स जो आपने कहा रियलिटी। हाउसिंग तो एक इंडिया में इट्स बूमिंग, अगर अब आप अभी, चूंकि हम लोग तो बड़े शहरों में हैं, दिल्ली में है या एनसीआर में है, नेशनल कैपिटल रीजन में, अगर आप इसके बाहर भी जाएं तो जो टीयर टू टीयर थ्री सिटीज हैं अब वहां पे भी रियलिटी जो है बूम, जो फ्लैट्स हम देख रहे हैं बन रहे हैं, तो वो एक कारण है जो आप देख रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है सेक्टर स्पेसिफिक आज कौन सा सेक्टर चढ़ा, मुझे लगता है ऑयल गैस भी अभी अट्रैक्टिव हो गया बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक अच्छा है। और दूसरा जो मुझे लगता है बैंकिंग है, और
बैंकिंग में लेकिन आज एक काफी इंडसइंड बैंक ने काफी चौंका दिया,
ठीक है वो एक अपवाद है, मतलब उस तरह की स्टोरीज आएंगी, लेकिन मुझे लगता है उससे कोई ओवरऑल
के बैंकों की अगर हम शेयर्स के आज की जो वैल्यूएशन देखते हैं वो क्या काफी आकर्षक है, और ऐसे समय में उसमें एक निवेश करने,
देखिए अमित, मैं ये बोलूंगा कि हमारे सरकारी बैंक एक तो बहुत, मतलब जो उनके फंडामेंटल्स हैं बहुत स्ट्रांग हैं, और इस साल इस वित्तीय वर्ष में मुझे लगता है रिकॉर्ड प्रॉफिट्स क्लॉक करेंगे इंडियन जो भारत के सरकारी बैंक हैं, तकरीबन मुझे लगता है प्रॉफिट्स 1,75,000 करोड़ के रेंज में होने वाले हैं, तो मुझे लगता है वो अगर, और वैल्यूएशन आपने बिल्कुल ठीक बोला बहुत अट्रैक्टिव है। हाँ, ये जरूर है मार्केट में आज के दिन आप आ रहे हैं तो ये मान के चलें कि थोड़ा धैर्य रख के आए, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा ये मान के चलें कि अभी ये थोड़ा इस तरह का जो दौर है वो लंबा खिंच सकता है, हो सकता है हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, फंडामेंटल्स हमारे स्टेबल हैं, इसके बावजूद बाजार में उथल पुथल रह सकती है।
But Siddharth, there are concerns over mounting US government shutdown. So what effect could that have? We discussed about further tariff escalations. We have discussed about weakening economic growth. In such a scenario, what should be the investment strategy of a person?
See, as Rajesh, as I just said, I think now if you look at good certain stocks, the valuations are very attractive. I would say there are stocks which have fallen almost, and these are good stocks which have good strong fundamentals again. So they're down by almost 40%, 45%. So I think one needs to do a good close study or get into with an expert. And I think one should start buying, not you start, don't buy everything at one go. But yes, I think you can start putting your money.
लगातार निवेश करें, थोड़ा थोड़ा निवेश करें और निवेशित बने रहे, नहीं तो म्यूचुअल फंड का रास्ता।
हाँ, वो तो बहुत बढ़िया है, उसमें फिर आपका कोई वो नहीं है, वो एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट बना रहता है।
जी,
मूविंग ऑन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन मॉरिशस टुडे ऑन अ 2-day स्टेट विजिट। Mr. Modi said, this visit is a wonderful opportunity to explore new avenues for collaborations in various sectors. Prime Minister will inaugurate over 20 India-funded projects ranging from capacity building to community-linked infrastructure during his visit to Mauritius. On the invitation of Prime Minister of Mauritius, Naveen Chandra Ramgoolam, Prime Minister Modi will also attend the Mauritius National Day celebrations tomorrow as the chief guest. What is noteworthy over here, Siddharth, is the India-funded projects that the Prime Minister, and very rightly he said, new opportunities that are coming there.
See, if we look at India, Mauritius historically, if also we, I think Mauritius, we have ties with Mauritius from the year 1948, if I'm not wrong, it goes that back. One of the very interesting features, if we look at India, Mauritius, is the 70% of the 12 lakh population of Mauritius, I think, is of Indian origin. So that also is a reason that historically both the countries, both India and Mauritius, have close ties. Plus, as far as you said, Prime Minister, I think this is his second visit. Mm-hmm. He made a visit in 2015, and we have been investing in Mauritius in a big way in helping them build their physical infrastructure, especially port, yeah, airport, those kind of. And the reason we are doing it is also that one is obviously we have 70% of the population is of Indian origin. Another important thing, if we'll go back historically, is Mahatma Gandhi. I think traveling, he was traveling to South Africa. He took a stopover at Mauritius, and the National Day of Mauritius, which is tomorrow, March 12, is also the same date when Mahatma Gandhi started his Dandi March. So I think, and as a mark of respect to Mahatma Gandhi, I think they have kept their national day as March 12. So it, the ties between India and Mauritius go back, you know, as old as those times. Plus, another reason is obviously the our neighbor China, which is very active in the Indian Ocean. So India obviously has to protect its own interests. So we have been helping them, and especially there is a port. I think they have a port city which is called Agalega or something called, if I'm pronouncing it right, where India has been investing heavily. Last year only, I think we helped them build a jetty as well as a airport. So I think
infrastructure is
yeah, there. And it is close to our southern this southern coast. And the reason, obviously, China being there, so we have to keep a very close ties with, and we are present in a big way in Mauritius.
कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं. वर्ष 2024 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश में कोयला आयात में 8.4% की गिरावट आई है. इसके कारण लगभग 42,300 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई. कोयला मंत्रालय के अनुसार घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों से इस अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में 6% से अधिक की वृद्धि हुई है.
India is the best positioned country in Asia for economic growth despite ongoing global trade tensions. According to a report by Morgan Stanley, India's strong services exports, low reliance on goods exports, and supportive government policies are the key factors that will help it outperform other economies in the region. While trade tensions are expected to impact Asia's overall growth outlook, India remains less vulnerable due to its low goods exports as a share of GDP. This reduces its exposure to global trade disruptions. At the same time, India's services export continue to perform well and are expected to grow further, providing stability and amid global uncertainties. Now, Siddharth, this report from Global from Morgan Stanley, combined with the economist in US, has said that in fact, he has strongly recommended Indian stock markets, urging investors to significantly increase their exposure despite valuation concerns. What's your take now?
See, as you said, Morgan Stanley report very clearly says policy stability, yes, which is very right. In terms of our own macroeconomic fundamentals, as we were discussing, India is clocking almost a growth rate of 6.5% plus. I think fourth quarter also we should be 7% plus. So, and plus our own inflation is coming down. Capital expenditure is picking up. We have done enough in the budget to push consumption, to create demand. I think positive is that if you look on the external front also, we have good forex reserves. Dollar index also has moderated. So that's a good news for us, despite rupee has been on pressure because of the FII exit. Plus, you also, another thing which we are huge importers of oil. Plus, besides all that, I think as far as we are trying to continuously frame our policies in a way which is investor friendly, we're trying to attract as much FDI as possible. And even in the budget, we have announced now that we will be looking at how to further deregulate our regulations so that there is, we're able to create more amicable atmosphere for ease of doing business. So I think all in all, India is poised for to attract investments. And in terms of stock market, as you mentioned about the US economist,
We are number 4 trend of 2025.
Yeah, plus you look at these kind of fundamentals. Which other country, you tell me, Rajesh, in the world? China, obviously, yes, they have also given a very positive this thing on growth front, but they are hugely, again, giving stimulus to their own economy. So what, and policy, as you said, policy stability, you tell me if we've had any reversals in past 10 years, 15 years. We have started from 1991, the path of reform, then we've been continuously pursuing that. We are now announcing FDI, 100% FDI in insurance, pension sector. So I think continuously the path is, we're moving ahead. And the stability, I think, obviously gives a track. Obviously, there will be factors which would impact the stock market. And we always say that stock market investor has to be very patient, cautious. And it's, you have to come here with a large heart that you have to stay invested for a long time. It's not something like you... No, you put money today and tomorrow you want to exit. So,
नफड़ा लेने एशियाई शेयर बाजार पर अमरीकी शेयर बाजार में गिरावट और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका से एशियाई बाजारों में आज मिला जुला दौर रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम सूचकांक में 1.9%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.3% और जापान का निक्केई 0.6% की गिरावट से बंद हुए। हालांकि चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.4% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मिला जुला रुझान रहा। जर्मनी में जहां मामूली बढ़त रही, वहीं फ्रांस का शेयर सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बना, जबकि लंदन के शेयर बाजार में मामूली बढ़त नजर आई।
US stocks ended sharply lower on Monday on fears that the US economy could be heading towards recession. This is primarily due to the current uncertainty surrounding the US trade policy. S&P 500 saw its biggest one-day drop since December 18, and the Nasdaq witnessed its biggest single-day percentage drop since September 2022. The Dow Jones Industrial Average plunged 2.08%, the S&P 500 sank 2.7%, and the Nasdaq plunged nearly 4%. Among Nasdaq stocks, Tesla share prices tumbled 15%, widening its loss this year to 45%, while Nvidia stock price fell 5.5% and has erased more than $1 trillion in market value in 2 months. Apple share price sank 4.85%, Microsoft shares fell 3.34%, and Amazon stock declined 2.36%. Recession in US. How true is this picture?
Rajesh, very difficult to say, because I think we've just heard this yesterday, and President Trump obviously refused to engage on this issue, and he just said that US economy is in transition. But yes, all the tech giants you were mentioning have lost their valuations in last two trading sessions. So I think things will unfold over next 15-20 days, a month. We will get a clearer picture, but I think it's more of a, I still feel we need to wait and watch, because I think all this is also impact of the the tariff.
So April 2, which
not
we
only
wait
for us,
watch.
April 2. I think in terms of how it happens, how he's able to deal with the other people, nations like Mexico, Canada, China. So how it pans out for US also, we will need to wait and watch.
Important. Moving on, the oil prices sparred early losses to rise up during trade on Tuesday, helped by weakness in US dollar, although gains were capped as concerns mounted over a potential US recession and the impact of tariffs on global economic growth. Brent crude was trading over 1.2% up at $70.12 per barrel. WTI crude was also trading over 1.2% up at around $66.84 per barrel when reports last came in. This rate augurs well for us. Very briefly.
Yes, obviously, anything below 70 or close to 70 is a big positive for us, and as we are huge importers of oil.
नफे डालते हैं सराफा बाजार पे। सराफा बाजार में सोना 0.6% की बढ़त से 86,270 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 1% की अधिक से तेजी से 97,600 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। समय की बाध्यता है, लेकिन अगर सोने और चांदी में तेजी का दौर शायद जारी रहेगा।
हम जब लास्ट टाइम भी मिले थे हमें, तो आपके साथ हमको याद है कि तब गोल्ड उस तब से और ऊपर आ गया। मुझे लगता है पिछले एक महीने डेढ़ महीने में भी 10% का इजाफा हुआ है गोल्ड के रेट्स में।
जी, तो सोने की चमक और सोना कितना सोना अभी भी बनाई रहेगा। शायद 1,00,000 के स्तर को पहला कौन छूता है, इसी की होड़ लगेगी। लेकिन सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।
और चलते चलते
for being with us. And before we close the headlines once again, Indian stock markets showed resilience despite fall in major international markets. Sensex fell marginally by 13 points to close at 74,102. Nifty rose 37 points. Prime Minister is on a visit to Mauritius, will inaugurate over 20 India-funded projects ranging from capacity building to community-linked infrastructure. And India is the best-positioned country in Asia for economic growth despite ongoing global trade tensions, says a report by Morgan Stanley. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.